सफ़ा नंबर 41। इस पर जीन ने आगे बढ़कर कर जब ये कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो हालत और भी गैर होगी, मगर फिर बकौल शक से मरता क्या ना करता जी कड़ा कर पूछ कहने लगा, मैंने तुम्हारा क्या गुनाह किया है जो तुम मुझे खा जाओगे? जीन ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, कहा तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हें ना कहूँ तो मुझे नौकर रख लो, घर ले चलो, मुझसे काम लो, लेकिन ख्याल रहे कि मैं बेकार नहीं बैठूंगा, बेकार बैठना पड़ा तो तुम्हें खा जाऊंगा। इस शख्स ने जो ये सुना तो जान में जाना ही, जिन से छुटकारे की और की सूरत तो नजर आती नहीं थी। जी में सोचा सस्ता सौदा है, क्यों ना इसे साथ ले चलूं, इससे काम हिंदुओं तो लेना है, लेता रहूंगा। कहने लगा बहुत बेहतर, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमसे काम लेता रहूंगा, बेकार नहीं बैठने दूंगा। जूं यूं चार न चार इसे घर ले आया। शुरू शुरू में तो चंद दिन बड़े आराम से गुजरे, मुफ्त का नौकर हाथ आ गया था, कई काम एक काम ना तमाम पड़ते थे, एक एक करके जिन के सुपुर्द होने लगे, एक खत्म होता तो दूसरा तजवीज कर दिया जाता, मगर ताब के एक दिन वो भी आया जब कोई काम ही नहीं था। जिन ने जो ये देखा कि बेकार बैठना पड़ेगा तो इसके सीने पर सवार हो गया, कहने लगा लाओ काम और अभी तुम्हारा काम खत्म तमाम करता हूं, इस गरीब की तो जान पर बनी थी, कहता जरा दम लो, सोचने दो, अभी बताता हूँ। जिन कहता है बताओ अभी बताओ वरना। मेरा ख्याल था कि वो शख्स अब जिन से शायद यह कहेगा कि देखो ये बांस तुम्हारे सामने पड़ा है, इसे सीधा खड़ा करो और इस पर चढ़ जाओ। मेरा ख्याल था कि वो शख्स अब जिन से शायद ये कहेगा कि देखो ये बांस तुम्हारे सामने पड़ा है, इसे सीधा खड़ा करो और इस पर चढ़ जाओ, चढ़ो और उतरो, उतरो और फिर चढ़ो, बस यूं ही चढ़ते उतरते रहो। लेकिन हजरत अल्लामा ने जो गुफ्तगू करते करते थक गए थे, बात आगे नहीं बढ़ाई, कहा तो इतना कि बस कुछ यही हालत अहले मगरब और इनके मतअबीन की है कि इनके जेहन को करार है ना जिंदगी में सुकून फरमाया, इत्मीनान कलब बड़ी नेमत है, और यही नेमत है जो यूरोप ने अपनी मादियत प्रस्ती में खो दी है। मैं समझ गया कि हजरत अल्लामा ने जिन की मिसाल पेश की तो किस लिए, मगरब का इंसान। सफा नंबर 42। अगर इत्मीनान कलब से महरूम है तो हमारे यहाँ भी इसकी तलकीन ने दिलों का सुकून और करार छीन लिया है, यहाँ इनके मुकल्लदीन की जान अजब कशश में है, वो ना माजी से अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं ना हाल से, हाल कलीसा को साथ लिए इनके सामने है, माजी काबे के सहारे इनके पीछे। अली बख्श पास ही तख्त पर बैठा था, हजरत अलामा ने हाथ के इशारे से बुलाया और फरमाया दवा खिला दो, दवा खा चुके तो जिन तकियों से सहारा लिए बैठे थे, इन्हीं एक तरफ हटाने के लिए कहा और करवट बदल कर लेट गए। 15-20 मिनट इस तरह फरमाई, फिर इरशाद हुआ चीलम बदलो और बिस्तर दुरुस्त कर दो, मतलब ये था कि आप कमरे में चलेंगे। अली बख्श ने तमीले अरशाद की, हजरत इलामा कमरे में तशरीफ ले गए और कदरे सस्ता कर हुक्के का कश लिया तो फरमाया, हुक्के का मजा जाता रहा और ये था भी ठीक, इसलिए कि दमकशी के बायस मुसलसल क्या जरा से कश लगाना भी नामुमकिन था। मैं पास ही कुर्सी पर बैठा था, अरशाद हुआ अली बख्श चाय तैयार करो, फिर मेरी तरफ इशारा किया और फरमाया ये कब से बैठे हैं चाय पियेंगे? रोजमर्रा सियासत की बातें होने लगी और रोजमर्रा सियासत से रुख से गुफ्तगू का रुख सियासी जमातों और सियासी जमातों से इन अफराद की तरफ मुड़ गया जो जकबा दीगर मैदान सियासत में उभरे। अरशाद हुआ एक दूर दूर वफादारी था, इस दौर में भी कौम का वजूद इन अफराद से खाली नहीं था जो दिल से हुकूमत के वफादार थे, बाई हिम्मा इनके दिल में मुसलमानों का दर्द था और वो सच्चे दिल से मिल्लत के बेहिख्वा थे। यूं बातों बातों में जिक्र का आ गया, फरमाया आम ख्याल ये है कि वफादारी इनकी घट्टी में पड़ी थी, ये बात एक हद तक ठीक है, मगर वो करते भी तो क्या, वो हुकूमत के ममनून एहसान थे, इन्हीं जो कुछ मिला सरकार अंग्रेजी से मिला, लिहाजा अंग्रेजों से इनके हुस्न ज़न और अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी की एक वजह इनका जज्बा तशक्कर भी था। ये नहीं कि सफा नंबर 43 वो गुलामी और महकूमी पर रजामंद थे जैसा कि अरबाब सियासत आमतौर पर समझते हैं। अरशाद हुआ जिस तरह आज आज़ादी और इस्तकलाल की सदाएं आम हो रही हैं, ऐसे ही एक ज़माना था कि बजज़ वफादारी के कोई दूसरा लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था, लेकिन इन हजरात का दिल इस दौरे वफादारी में भी खलूस और दर्दबंदी से खाली नहीं था, इन्हीं कौम से सच्ची मोहब्बत थी। फिर हकूक़ तलबी का दौर आया और इस दौर में भी उन्होंने दयानतदारी से कौम का साथ दिया, मगर ज़माना बड़ा तेज़ रौ है, इससे नरम रवि पसंद नहीं, बतबा नरम रो या बा इस्तला सियासत इस्तदलाल पसंद थे और अपने इतदाल पसंद अहबाब की तरह इन तब्दीलियों का साथ नहीं दे सकते। जो जमान ने अपने साथ ले आया था। फरमाया, अफसोस है, मुसलमान सियासी एतबार से हमेशा गैर मुनज़्ज़म रहे, इनमें कोई इतदाल पसंद फरीक कायम मुसलमान हो सका जिसमें इन हजरात का फिल वाक़ शुमार होता। हिंदू अलबत्त कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म है, इनके यहाँ भी एक इतदाल पसंद फरीक मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जो इसे गुलामी और वफादारी का ताना दे या इस पर खुदगर्जी और मुफाद पसंदी का इल्ज़ाम लगे। चुनचा जिमीदार ऐसे हुर्रियत पसंद अखबार में भी ये शेर बरसों जैबे अनवान रहा, तुम खैर ख्वा दौलत बरतानिया रहो, समझे जनाब कैसर हिंद अपना जान निसार, कबल तकसीम का लिबरल फेडरेशन। हजरत इलामा ने यह कह कहकर सकूत फरमाया तो मैं सोचने लगा कि 1857 के हंगामा खूनी खुनीन के बाद जब मुसलमानों का मुस्तकबिल ना सिर्फ मखदूश बल्कि तारीख नजर आ रहा था, सर सैयद मरहूम की क्यादत इनके आड़े आई। 1857 से पहले इनके ख्यालात कुछ भी हों, 1857 के बाद हालात जिस तेजी से बिगड़े उनसे सर सैयद के दिलो दिमाग में एक इनकलाब रूनमा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि 1857 के हादसा अलमिया की सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों पर आयद होती है। जैसा कि उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो रफ़ फसाद सफ़ा नंबर 44 और क़याम अमन के लिए नहीं बल्कि फसाद और बदअमनी से फ़ायदा उठाते हुए गलबा व तसल्लत के लिए। सर सैयद का ख्याल था कि सियासत और जहां बानी की रूह है, मुआशरे की हफाजत और इंसानी कदरों का एहतराम ये नहीं कि अगर हमें किसी कौम पर इकतदार हासिल है या दौलत और ताकत से बहरा मिला है तो हाकम व महकूम और आका और गुलाम का इम्तियाज पैदा करें। उन्होंने ये बात अंग्रेज़ों को भी समझाई कतई नज़र इससे कि वो इसे समझे या नहीं। दूसरी जानब इनकी नज़र हालात पर थी, हालात बर हालात वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेज़ों की मुखालफत और मुजाहमत की बजाय अगर मुसलमान इनसे इश्तराक व तावन की राह अख्तियार करें तो ये इनके हक में बेहतर होगा। उन्होंने हकायक की तरकीब से फायदा, मुसलमानों का इकतदार ख़त्म हो चुका है, क्यों ना अंग्रेज़ों के हाथों अपनी शिकस्त का एतराफ़ करें, और अंग्रेज़ जिस नए दौर को अपने साथ लेकर आए हैं इसमें हुकूमत वक़्त की अतात और अंग्रेज़ी तालीम के हसूल से अपने मुस्तकबिल की तमीर में मसरूफ़ हो जाए। सर सैयद की क़्यादत हमारी निशात सानिया की तमीर है, लेकिन हम नहीं समझे तो ये कि सर सैयद ने जो कुछ कहा था बाएतवार हालात और बात तकाज़ाए मुसहलत बाइना अतात और वफादारी भी एक वक्ती चीज़ थी और हसूल तलीम भी मुसलमानों की जहनी पैदावारी में एक ज़रूरी मरला, लेकिन हुआ ये कि यह हुआ ये और सर सैयद के ख़िलाफ़ मंशा के अतात ने वफादारी लिहाजा महकूमियत और तलीम ने अंग्रेजियत बालफाज दीगर मगरबियत का रास्ता इख्तियार किया। फिर अगरचा अंग्रेज़ इस ज़माने में इस्लाम और आलम इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे और वही इसी सियासत और कौमियत की आड़ में जिसकी बिना वतनीत और लादीनीत पर थी अहले हिंद को एक ऐसा सबक दे रहे थे जिसकी जर्द बराह रास्त मुसलमानों पर पड़ती थी। भाई हम मुसलमानों के दिल में यह ख्याल रोज़ बरोज़ तकवीत पकड़ता गया कि इनका मफाद इसी में है कि अंग्रेज़ इस मुल्क पर काबज रहें, लिहाजा इनके सामने दो ही रास्ते थे, अंग्रेज़ों की मुखालफत या मुवाफ़क़त। मकसद ये कि इनकी सियासत में नरम व गरम या मीन वसार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सफ़ा नंबर 45, वो वफादार थे या बागी इतदाल पसंद बहरहाल नहीं थे, और अगर थे भी तो इनका शुमार वफादारों ही में होता, और वो ये लगता है जिसे लसान असर अकबर ने अपने मखसूस अंदाज में किस खूबी से समझाया है। शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुए, एक है खुफिया पुलिस में, एक फांसी पा गया। हजरत इलामा ने मेरी मरूजात सुनी तो फरमाया, सर सैयद की ज़ात बड़ी बुलंद थी, बड़ी हमागीर, अफसोस है कि मुसलमानों को फिर वैसा कोई रहनुमा नहीं मिला। अरशाद हुआ, अंग्रेज़ बड़ा काया है, सियासत के दे दाव पेश खूब समझता है, इसने वहाँ भी जो दो सखा से काम लिया है, जहाँ वफादारी भी अभी महकूमी पर कनात और रजामंदी का रंग पैदा नहीं हुआ था। फिर कदरे सुकूत फरमाया जैसे कोई बात याद आ गई और कहा, मसलन ने खुद मुझसे कहा, मेरे दिल में एक बात खटक रही थी और वो ये कि जिस तरह वफादारी से रफ्ता रफ्ता महकूमी पर कनात और रजामंदी को तहरीक हुई, बल्कि एक हद तक इस ख्याल को कि बरतानवी निज़ाम हुकूमत से बेहतर ना कोई निज़ाम सियासत है ना बरतानवी सल्तनत के शायद कभी जवाल होगा, बाइना तलीम से तलकीद व तशबा को अलीगढ़ की इमारत ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नमूनों पर तैयार होती थी। इससे मुसलमानों का ज़हनी अहया मकसूद था ना इनके शौर्य मिल्ली की तकवीयत, मकसद था तो सिर्फ ये कि मुसलमान मगरबी अलूम फ़नून हासिल करें और मगरबी तहजीबो तमद्दन से आशना हो। ये मकसद पूरा हुआ, मुसलमान मगरब तिर बढ़े, और जैसा कि सर सैयद ने कहा था, इस यकीन व एतमाद के साथ कि इस्लाम इनकी तरक्की में हायल है, ना सियासत और तमद्दन व तहजीब में आगे बढ़ने से रोकता है, वह हुकूमत वक़्त से इश्तराक और मजहबी तहजीब अख्तियार करें। जब भी मुसलमान रह करते हैं, हालांकि गौर से सफा नंबर 46 देखा जाए तो ये एक ऐसा मनफियाना तर्ज अमल है, इसलिए कि महज इतना कह देने से कि इस्लाम हमारी तरक्की में हायल नहीं, कोई मुस्बत राह अमल पैदा नहीं होता, ना सियासत में ना तहजीब तमद्दन में। गोया एतबार से वक़्त ये ख्याल भी मुमकिन था, गनीमत था, जो एक नया अज़म और नई बेदारी पैदा हुई। लिहाजा अलीगढ़ सही इस्लामी तलीम का ना सही, एक नई कौमी ज़िंदगी और नई रूह का मज़र बन गया, वो रूह जो हमारे जज्बे मिली और कौमी असबियत का सर चश्मा है और जिसकी बदौलत हमने माजी से निकल कर मुस्तकबिल में कदम रखा। लेकिन अलीगढ़ नहीं समझा कि इस्लाम ने तहजीब व तमद्दन का एक अपना तसव्वुर कायम किया और हमारी इनफरादियत और जुदागाना तशख़ीस का राज इस कोशिश में मजमर है कि इस तसव्वुर की तर्जमानी अपने अमल में करें। ऐसे ही ये हकीकत भी इसकी निगाहों से ओझल रही कि इस्लाम बजाय खुद एक निज़ाम इज्तिमा व इमरान है, लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी सियासी अमल लाहे अमल मरतब करें, इसकी रायत से करें। यही वजह है कि हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा होता गया और कोई सही क़्यादत कायम ना हो सकी। ख्वास का रिश्ता अवाम से कट गया, अवाम पुरानी रवायात और माजी में उलझे रहे, ख्वास ने अपने इर्द गिर्द एक मसनू दुनिया आबाद कर ली, ऐसी दुनिया जिसकी फ़िज़ा सरता मगरबी थी। इनका दिल मगरब में था, बदन कौमी रिश्तों में जकड़ा हुआ, वो गोया धरी जिंदगी बसर कर रहे थे। अंदरूनी सूरत व तहरीकें जो बतौर एहतजाज या रद्द अमल के पैदा हुई बेनतीजा रहीं, वो भी हमारी निशात सानिया का सही रुख मुतय्यन नहीं कर सकें। अरशाद व गुलामी और महकूमी बहुत बड़ी लानत है। हुकूमत और इकतदार एक सहर है जिससे महकूमों के दिलो दिमाग माउफ हो जाते हैं। अलीगढ़ की कितनी बड़ी खूबी है कि इसने हमारे दिलो दिमाग को महफूज रखा, या फिर यूं कहना चाहिए कि इस्लाम में ज़िंदगी की बेपनाह कुव्वत है। ये कुव्वत अलीगढ़ में भी कार फरमा थी, लिहाजा बावजूद मगरबी तलीम के मुसलमानों का जज्बा मिली कायम और बरकरार रहा। फिर फरमाया, इंसान जब किसी तहजीब से मुतासर होता है तो इसकी अच्छी बुरी सब बातें इख्तियार कर लेता है। सफ़ा नंबर 47, मगरबी तहजीब की नकाली और इसके ज़ाहरी और सती पहलुओं की दिलकशी बजाय खुद एक मुसीबत थी। मगरबी तलीम ने हमारे लिए और भी फितने पैदा कर दिए। अरशाद हुआ, आज की बात और है, आज इस तलीम के मुजर नतायज हमारे सामने हैं। जैसे कभी तरक्की का वाहिद जरिया ठहराया जाता था, हम इस तलीम का मातम कहाँ कहाँ नहीं करते, सियासत में, इखलाक में, फिक्रो फरहंग में, तमद्दन और मुआशरत में, लेकिन इसकी खराबियां तो इब्तदा ही से अयां थीं। ये दूसरी बात है कि यूं दिलों में जो फसाद पैदा हुआ, इसके असरात बहुत आगे चलकर सामने आए। मैं हनूज कुछ अर्ज नहीं करने पाया था कि हजरत अल्लामा ने हुक्के के दो एक कश लेकर फरमाया, इसकी मिसाल यह है कि जब हसूल तलीम के बाद वलैत से वापस आए तो एक रोज मोची दरवाजे के बाहर तकरीर में कहने लगे, हमें मगरब से बहुत कुछ सीखना है, हमारा कानून विरासत बड़ा नाकस है, हमें चाहिए कि इस कानून को बदल दें और वो अपना रास्ता अख्तियार करें जो महजब मुल्कों का है। असल में मोती दरवाज़ा जब तक लाहौर की आबादी अंदरूने शहर में महदूद रही, मोची दरवाज़ा और गोल सड़क का दरमियानी बाग ही इस्लामी इजमात का बड़ा मरकज़ था। इस पर मैंने बातजब दरियाफ्त किया कि हमारे कानून विरासत में क्या नुक्स है और वो क्या रास्ता है जो महजब ममालक के अतबा में हमें अख्तियार करना चाहिए। अरशाद हुआ, नुक्स ये है कि हमारे कानून विरासत ने बेटों और बेटियों सबको हिस्सेदार ठहराया है, सबका वरसे में अपना अपना हक है। अब अगर किसी शख्स का तरका सिर्फ जर वसीम पर मुश्तमिल है जो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर तरके में ज़मीन भी शामिल है और जैसा कि शरीयत का तकाजा है कि बेटे और बेटियों सबको हिस्सा दिया गया, तो इस तकसीम दर तकसीम से एक रोज़ ये सूरत होगी कि किसी के पास कोई ज़मीन नहीं रहेगी, यानी जहाँ तक काश का तल्लक है बढ़ते बढ़ते कालदम हो जाएगी। सफ़ा नंबर 48 फरमाया, ये तो हुआ बकौल हमारे कानून विरासत का नुक्स। सलाह का रास्ता यह है कि बेटियों को ज़मीन से मुतलका हिस्सा ना मिले, जैसा कि रवाजन पंजाब में तय पा चुका है। लर्रिजाल नसीबा मम्मा तरक अलवदान वाला करबून वल निसा नसीब मम्मा तरक अलवदान वल कराबून ममा कलक मना अक्सर नसीबा मजरूजा अनिसा फोर। मैंने अर्ज किया लेकिन यूं भी तो इस खराबी का सदबाब नहीं होगा जिस तरफ आपने इशारा किया है, इसलिए कि जमीन बेटे और बेटियों में ना सही, बेटों और उनके बेटों में तकसीम दर तकसीम होते होते बहरहाल कालदम हो जाएगी और अंजाम कार किसी के पास काशत के लिए कुछ ना रहेगा। लिहाजा साहब जिस सूरत हाल से खायफ हैं इससे मुफरत तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। अरशाद बाब मगर ये बात एक जिम्मेदार की समझ में तो नहीं आएगी, वो अपने रस्म और रवाज से मजबूर है, समझना चाहे भी तो नहीं समझेगा, इसकी दुनिया बड़ी महदूद है। मगर बा हम्दुलिल्लाह के क़यामे पाकिस्तान के बाद हालात वो नहीं रहे जिसके पेश नज़र हजरत अल्लामा ने कभी फरमाया था, बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तो खाक के बाद, इसी खाक में दब गई तेरी आग, सहर की अजां हो गई अब तो जाग, जमीन में है गो खाक खा क्योंकि बरात नहीं, इस अंधेरे में आबे हयात जमाने में झूठा है इसकी कांगे, जो अपनी खुदी को परखता नहीं बता शाऊब व कबायल को तोड़े रसूम, कहन के सलासल को तोड़ यही दीन महकम यही फता याब, के दुनिया में तोहीद हो बेहिजाब व खाक के बदन दाना दिल फशां के ऐ दाना दारद हासल निशां बाले जबरील। मैंने कहा सफ़ा नंबर 49, मैंने कहा लेकिन पढ़े लिखे ज़मींदार तो खूब जानते हैं कि पंजाब के ज़मींदारों ने अगरचा ज़मीन के मामलों में बेटियों को महरूम अलवारस करार दे रखा है, बाहिमी बाहमा हुकूमत मजबूर हो गई कि इनकी छोटी छोटी ज़मींदारों के पेश नज़र इश्तमाल एराजी का कानून नाफज करे या फिर ज़मीन को तमाम व कमाल महफूज रखा जा सकता है, तो यूं कि हमारे यहाँ भी हक के खलफ अकबर के दस्तूर पर अमल किया जाए, मगर इस्लाम तो इस किस्म के किसी दस्तूर को गवारा नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि हम इस निज़ाम मुआशरत की नफ़ी कर रहे हैं जो शरीयत का मकसूद है, ताकि छोटे छोटे कतात को बहम मिलाकर बड़े पैमाने पर काश्त की जा सके और यूं मालकान कतात और मुल्क की ज़रूरी पैदावार दोनों को फ़ायदा पहुँचे, जैसा कि मगरब की तलकिन में अंग्रेज़ी कानून से फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ भी इस किस्म की जिम्मेदारियां कायम हुई। इस पर इस्लामी तारीख में ज़मीन की हैसियत पर गुफ्तगू होने लगी, आलम इस्लाम में तो कभी इस किस्म की जिम्मेदारियां कायम नहीं हुई जिनसे आज हमें साबका पड़ रहा है, ना ज़मीन पर अफराद के हक़ मलकियत ने वो शक्ल अख्तियार की जो अब अख्तियार कर रखी है, हालांकि निज़ाम खिलाफत दरहम हो गया है, बादशाह ने सर उठाया, जागीरें कायम हुई, हत्ता के मुजारत को भी जायज़ करार दिया गया। मसलन फिक्का हनफी क्रू से अगरचा फतवाए आलमगिरी में है कि अंदा यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नाजायज़ा है, अलबत्ता अंध हा यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद के नज़दीक जायज़ बाय हमा। इस मजारत और आजकल की मजारत में बड़ा फ़र्क है, देखिए फतवा आलमगिरी अरशाद व दरअसल ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे फुकाए नज़मीन के मसला में सफ़ा नंबर 50 जो कुछ लिखा है इसका बात तहकीक मुतालिया किया जाए, फिर माहरीन फ़न मौजूदा हालात की राय से इस मसले पर गौर करें। ज़मीन की बहरहाल ये हैसियत नहीं कि हम इस पर आम अशिया इस्तेमाल की तरह अफराद का हक मलकियत तस्लीम करें। ने अपनी तकरीर में जिन ख्यालात का इजहार किया इसकी वजह यह थी कि उन्होंने ज़मीन के बाब में इस्लाम की रवश को समझा, ना इस्लामी कानून विरासत की मसलतों को, जहाँ तक ताकि जहाँ कहीं निज़ाम खिलाफत इनहराफ के बायस ज़ाती अमलाक का दायरा फैलने लगा या मलकियत मालक और मालक के तसव्वुर में कुछ मखसूस और नाकाबिल तगैर मानी पैदा कर लिया गया या हालात ने उम्मत का रुख बाज़ गलत अकदाम की तरफ मोड़ दिया, इनकी तयीन हो जाए और इस्लाम की रूह इज्तहाद जो हर किस्म के गज़ब व तकल्लब के खिलाफ है कोरा ना तलकीद के फंदों से इस्तख़लास हासिल कर सके, और जिनकी तरफ तश्कील जदीदुलहयात इस्लामिया में हज़रत अल्लामा ने चंद मानी खेज इशारे किए हैं। फ़ान करीम कहता है इस्लामी कानून विरासत एक अछूती चीज़ है जिसकी मसलतों को अभी हमें समझना है। देखिए छठा खुतबा अल इज्तहाद फिल इस्लाम, हज़रत अल्लामा ने फिर जो साहब का जिक्र किया तो मैंने पूछा क्या इनकी तकरीर को सुनकर साइमीन बिल्कुल खामोश रहे, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। फरमाया इनकी शख्सियत और मुताद गुफ्तगू के पेश नज़र दौरान गुफ्तगू मैं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बाद में अलबत्ता किसी ने तारीफ की, किसी ने इतराज़, कोई खामोश रहा और फिर कदरे सुकूत के बाद कहने लगे अब के हालात बदल गए हैं, पुराने ख्यालात की जगह नए ख्यालात ने ले लिया, अब दुनिया में एक ऐसा निज़ाम भी कायम है जो ज़मीन पर अफराद का हक मलकियत तस्लीम नहीं करता। लोगों ने कहना शुरू किया कर दिया कि इस्लाम का कानून विरासत बड़ा खूब है। सफा नंबर 51, इसकी गईयत है दौलत की तकसीम दर तकसीम, ताकि जर अंदोजी की नौबत आए, ना इजारादारी की ना जगीरें हों, ना जिमीदारा और काश्तकार का बाहमी नज़ा। यूं निज़ाम सरमायादारी पर भी कड़ी ज़र्ब लगती है। रही जमीन, सो जमीन अल्लाह का माल है, इस पर किसी को हक मलकियत हासिल नहीं। इस वक्त जमहूरिया शोरिया रूस में काल अल अमाम अबू यूसुफ अल अर्ज अल्लाह सुम अल रसूल सुम लिल मुसलमीन किताबुल खराज वल अर्ज वज हाल नाम। लिहाजा आलम कुरानी के तीसरे रुकन अल अर्ज मुल्क खुदा अस्त की वजाहत में पैगाम अफगानी बा मिल्लत रूसिया के तहत हजरत लामा के इरशादात रिजक खुद दारे अजमीन बर्दन रवास्त ऐन मता बंदा व मलक खुदा अस्त बंदा मोमन अमीम अमीने हक मालक के अस्त गैर हक हर शय के बीनी हालक के अस्त आबे नान मस्त अजदीक के मायदा दोद आदम कनफस वाहदा। जवेद नामा के इन अशार में शेर अव्वल के मिसरा सानी का इशारा है वेलकम फिल अर्ज मुस्तकर्रर व मताला अलहीन, और आखिरी शेर के दूसरे मिसरे का वमा खलक वल मबास्त अलनकफ्स वाहिदा की तरफ पे, और फिर बारे जबरील में वंतम तरजाना अलनरजौन के हवाले से कहते हैं, पालता है बीज को मिट्टी की तरीकी में कौन, इनका ये कहना है वो खुदा ये जमीन तेरी नहीं मेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं मेरी नहीं तेरी नहीं। और जिसमें बुनियादी नुक्ता वाज़े अर्ज वज़ा है तफसील आगे आएगी। सफ़ा नंबर 52, शंबा 8 जनवरी। ख्याल था कि जब तक मज़मून की तकमील नहीं होती सुबह या शाम किसी वक्त सरसरी तौर पर जवेद मंजर हो आया करूँ। मतलब यह था कि हज़रत अल्लामा की मिजाज पुरसी के साथ साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू मज़मून पर हो जाया करे और हालात की भी इतला रहे, लेकिन एक तो मज़मून मुकम्मल ना हुआ, नेटशे के बारे में एलोपैथिक अमर दरियाफ्त तलब था। दूसरा अभी सुबह ही थी कि अली बख्श आ गया, कहने लगे डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं, अरशाद है कि किसी वक्त हाजिर हो जाऊँ। ज़रूरी नहीं कि अभी हकीम साहब के साथ दुआ लेने आया था, आपको भी पैगाम देना था। डॉक्टर साहब की तबीयत अच्छी है, रात आराम से सोए हैं। करशी साहब कोई 3 बजे थे कि जवेद मंजर पहुंचा, मालूम हुआ कि हजरत इलामा मुंतजर है। हसबे ममूल ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, सलाम अर्ज किया, खैरियत मिजाज पूछी और माजरत की कि हाजिरी में देर होगी। फरमाया कोई मज़ाक़ा नहीं, चंद एक अशार हो गए हैं, तुम्हारा आना जरूरी था, दर्ज ब्याज हो जाएंगे। कुछ रुबाइयाँ हैं, कलम बंद कर दो बस। सिलसिला अरमगान इजाज में तशमीले तकमीले अरशाद के लिए उठा, अलमारी से ब्याज निकाली, कलमदान उठाए और अपनी कजा पर आ बैठा। हजरत इलामा ने पास ही रखी हुई तपाई की तरफ हाथ बढ़ाया, दो चार पुर्जे कागजों के उठाए, इन्हें उलट पुलट कर देखा और फरमाया लिखो। ये अलमारी हजरत इलामा के सरहाने दीवार से लगी थी शायद अब भी, जिसमें कुरान मजीद के अलावा कुछ किताबें और कागजात रखे थे, खासा पुराना और साल हर साल से हजरत इलामा के जेर इस्तेमाल। सफा नंबर 53, मैं बासद शौक हजरत अलामा के इरशादात का मुंतजर था। जैसे जैसे हजरत अलामा कागज़ के पुर्जों को तरतीब देते मेरा इश्तियाक बढ़ रहा था कि क्या वो हकायक और क्या अफकार हैं जो अब जेबे करतास होंगे। हजरत अलामा जब एक एक करके पुर्जों का जायजा ले चुके तो ये देख करके उनमें उनके इरशाद का मुंतजर हूँ, अव्वल इन्हीं अपनी जगह पर रख दिया, फिर एक पुर्जा उठाया और एक अहद लफ्ज पर जो बतौर यादाश्त इस पर लिख रखा था नज़र डालते हुए एक रुबाई अरशाद फरमाई, फिर दूसरी और ऐसे ही यक बाद दीगर तीसरी और चौथी ता अंका जुमला रुबाइयाँ कलम बंद हो गईं। जिस तरह गालिब के बारे में लिखा है कि अगर रात को दफन तबीयत में आमद होती और शेर पर शेर होने लगता तो सहूलत हाफज हिफज के लिए हर शेर पर कमर बंद में गिरा लगा लेते, सुबह उठकर एक एक गिरा खोलते, शेर हाफजे में मुस्तखर हो जाता और मिर्ज़ा साहब इसे ब्याज में नकल कर लेते। बाइना मैंने देखा कि हजरत अलामा ने भी कागज़ के मुतफरक पुर्जों पर टूटे फूटे हरूफ की सूरत में कुछ निशान कर रखे थे, जिन पर नज़र डालते तो हर निशान पर जैसे जैसे कोई रुबाई जहन में लौट आती हजरत अलामा इसे लिखवाना शुरू कर देते। यूं रुबाइयाँ कलम बंद हो गईं तो एक एक रुबाई पढ़वा कर पढ़ना, हज़रत इलामा इसे गौर से सुनते और जहाँ कहीं मुनासिब होता इस्लाह भी फरमा देते, ता अंका रुबाइयाँ साफ हो गईं और मैंने ब्याज अलमारी में रख दी। अरशाद व मजमून क्या मुकम्मल हो गया? मैंने अर्ज किया, करीबन करीबन, लेकिन एक अमर दरियाफ्त तलब है। फरमाया क्या? मैंने कहा कि ये कि नतीशे के जहन में जमात का कोई तसव्वुर भी था या नहीं? फरमाया, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? मैंने अर्ज किया, यूं कि नतीशे का बुनियादी तसव्वुर है फौकल बशर, जिससे ख्याल होता है इसकी तमाम तर तवज्जा फर्द पाती और वो अरादा बराए ताकत का कायल है, लिहाजा ताकत का प्रस्तार। सफा नंबर 54, ताकत ही की परतशस में इसने फौकल बशर का तसव्वुर कायम किया। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान और ज़ात इंसानी के तसव्वुर के बारे में हम जो तसव्वुर भी कायम करेंगे, इसमें हमारा ज़हन फ़र्द ही पर मरकूज़ होगा, ख्वा इस तसव्वुर की नोयत कुछ भी हो, महदूद या फ़र्द और जमात दोनों पर हावी। इसलिए कि जमात की तरकीब अफराद ही से होती है, अफराद ही कि किसी तसव्वुर की बिना पर जमात की तरह डालते हैं, लेकिन नतीशे तो हमेशा फ़र्द ही से खिताब करता है, जैसे कि इसके सामने सिर्फ फ़र्द ही की ज़ात है, फ़र्द ही की शख्सियत, तकदीर और मुस्तकबिल, वेल टू पावर, बातबाह कांट और शोपन हायवेयर कांट के नज़दीक अकल महज नारसा है, हकीकत तक नहीं पहुँचती, लिहाजा इंसान का सहारा है अरादा बराए खैर अमलन और अखलाकन दोनों लिहाज से। शोपियन हावर कहता है कि अरादा मशीयत ही असल हकीकत है, गो बेबसर, लिहाजा इसकी कनौतियत के कुछ जो कुछ है अब्स, बेमानी और बेमकसद, जिंदगी महज दुख है। नतीशे कहता है कि बेहतर, लेकिन इस कनूयत और दुख दर्द को ताकत का सर चश्मा बनाना चाहिए। देखिए प्यामे मशरक, शोपन हावर, नतीशा, मर गए जर अशियाना, बासेरे चम परेद, खारे जर शाख, गुल बतन नाजे कशन खलील, बदगुफ्त फितरत चमन रोजगार, रा अज दर ख्वेश वह में जगम तीगरा ताबीद, जिस पर नतीशे ने कहा, दरमियान जर्द साज अगर, खस्ता तन शवा, खोगर बखार शो के सरपाए चमन शोवा। और इसलिए इखलाक भी ताकत के ताबे है, लेकिन हजरत अल्लामा के नज़दीक ताकत का मियार है इखलाक, और इखलाक से मकसूद हिफज खुदी, खुददारी, खुदगरी, खुद नगरी, अरादा बराए ताकत का महजर, तुम बा मुकाबला नायब हक जो ताकत के बावजूद मकारम। सफा नंबर 55, इखलाक का नमूना है और नुए इंसानी के लिए रहमत। नायब हक की ज़ात में ताकत की हसीयत भी एक अखलाकी कदर की हो जाती है, जैसे गलबन नतीशे का, जैसा कि बेजबान आरफ रूम, हजरत अलामा ने रमूज बेखुदी के तारह में फरमाया, जहद कन दर बेखुदी दर राबियाब, जुर तर्द वल्ला इलम बिस्वाब। अरशाद हुआ, तुमने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। मैंने अर्ज किया, करना चाहता था कि नतीशे ने जमात का बहुत कम जिक्र किया, अगर किया है तो इसके अमारती निज़ाम का, यूनान की सियासी इस्तलाह में एस्ट्रोनिक्रेकिटिक, बामकाबला जमहूरी डेमोक्रेटिक, ताकि जमाना इकतदार ख्वास के हाथ में रहे। नतीशे का ख्याल था कि यूरोप के सियासी निज़ाम में अवाम को ख्वास पर बरतरी हासिल है, दर आंख हालिया बरतरी ख्वास का हक है ना कि अवाम का। फरमाया, तुम्हारा ख्याल सही है। ये मसला के जमात के बाब में इसका मसला क्या था, फिलवाक़िया मुख्तलिफिया है। मुमकिन है इसका ख्याल हो कि फौकल बशर ही रफ्तार रफ्तार या कि जमात की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। मैंने अर्ज किया, लेकिन फौकल बशर का जहूर तो कभी कभी होता है, इसकी सारी खूबी इसकी इनफरादियत और कमयाबी में है, वह नसबुल ऐन है, बाकी सब इसके पैरों और मंतजर हैं। फरमाया, जब ही तो मैं इसके मतबाइन ने इस बाब में अलग अलग राय कायम की हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि नतीशे की तबीयत पर इनफरादियत पसंदी का ही का गलबा था, इसकी हमशीरा। सफा नंबर 56 ने भी तो यही लिखा है कि इसे ईरानियों का ये अकीदा कि हर सदी में एक मुजद्दद का ज़हूर होता है बड़ा पसंद था, मुमकिन है वो अपने आप को मुजद्दद ही समझता हो, और जिसमें अकलियत ख्वास अक्सरियत अवाम पर गालब रहेगी। एलिजबत अपने भाई की सुहानिया निगार और आखिर उमर बिलखसूस ज़माना है अलालत में इसका सहारा, कबल इस्लाम के ईरानियों यानी मजूसियों, उर्फ़ आम में हारसियों या पीरवान जरतश्त का लुगवी ना के इस्लामी इस्तलाह में, اصلاحتن زرتشت کے کسی نازیدہ بیٹے یعنی مثیل کا، جیسا کہ معلوم ہے مجوسیوں کے نزدیک خیر اور شر دو الگ الگ اصول ہیں۔ محاورہ عام میں خیر کو یزدان کہا گیا ہے، شر کو ہریمن، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا دونوں میں مسلسل آبیزش جاری ہے۔ ابتدا میں خیر کو غلبہ حاصل تھا، پھر شر نے خیر پر فتح پائی، بالآخر الامر خیر ہی غلبہ ہوگا، لیکن اس زمانے میں کہ خیر شر سے مغلوب ہے اور جسے بیچ کا زمانہ کہا گیا ہے، ایسی عظیم ہستیوں کا ظہور ہوتا رہے گا جس سے خیر کو تقویت پہنچے گی۔ اہل مغرب نے ان کو زرتشت کے نازیدہ بیٹے کہا ہے، حضرت علامہ نے مجدد، اس لیے یہی ہستیاں ہیں جن کی بدولت دین زرتشت کی تجدید ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مجوسی ذہن پر انتظار کا غلبہ ہے، ہمیشہ کسی آنے والے کا منتظر۔ نٹیشے زرتشت کا بڑا قائل تھا، وہ اس کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے کرتا ہے، لیکن بلکہ اپنے آپ کو اس کا پیرو ٹھہراتا ہے، عقیدہ نہیں معان، اس لیے کہ نٹیشے کو بھی اپنے رنگ میں ایک معرکہ در پیش تھا، خیر و شر کا نہ صحیح، انسان کی تقدیر اور مستقبل کا۔ وہ کہتا ہے زندگی نام ہے اس مسلسل آویزش کا، جس میں ہماری کامیابی کا دار و مدار میں وہ ذی قوت اور صحت مند ہستیاں جو اعلیٰ زندگی کا نمونہ ہوں۔ لہذا ایرانیوں کے عقیدہ مجدد دین کے لیے، صفحہ نمبر 57، نٹیشے کی شگفتگی اور اپنی بہترین تصنیف یا کتاب دعوت کے لیے اس کا عنوان آلسو سپریچ زارا نسٹرا چینن گفت است زرتشت ممکن ہے، وہ اپنے آپ کو مجدد ہی سمجھتا ہو۔ ان معنوں میں سے نٹیشے مغرب کی مسیح دنیا سے بیزار تھا، اس کا خیال تھا مسیحیت نے انسان کو زوف اور بے بسی پر راضی کر رکھا ہے، یہ شکست اور فرار ہے، تعطل اور بزدلی۔ چنانچہ مسیحیت کے خلاف اس نے اپنی دعوت جس دلی جوش اور ولولے سے پیش کی، اسے سب جانتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے حضرت علامہ نے، از سستی عناصر انسان دانش کبید، فکر حکیم پیکر محکم، تر افرید افگند در فرنگ، صد اشوب تازہ دیوانہ بگارک، گہ شیشہ گرز رسید پیام مشرق۔ صفحہ نمبر 58، دوشنبہ 10 جنوری، کل یوم اقبال تھا، دلی سے مولانا اسلم جناب پرویز شیخ سراج الحق اور حضرت اسد ملتانی بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ دن بھر جلسوں اور ملاقاتوں سے فرصت نہ ملی کہ حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لہذا ابھی 8 نہیں بجے تھے کہ اب جویز منزل پہنچ گیا۔ اول علی بخش سے ملا، حضرت علامہ کی خیریت مزاج دریافت کی، معلوم ہوا طبیعت اچھی ہے، ابھی ناشتہ کیا اور دوا کھائی ہے۔ کرشی صاحب آئے تھے، چودھری صاحب بھی ہو گئے ہیں، مولانا حافظ محمد اسلم جراج پوری مرحوم استاد جامعہ ملیہ اسلامیہ 1957 میں وفات پا گئے، صاحب الطلوع اسلام دلی کراچی و لاہور، اس وقت کے ہندوستان میں ریلوے بورڈ کے عہدیدار، نمبر 4 مشہور شاعر، 1960 میں فوت ہوئے، اسسٹنٹ سیکرٹری شعبہ امور خارجہ، نمبر 5 چودھری محمد حسین مرحوم۔ میں نے خوابگاہ میں داخل ہو کر عرض سلام کیا اور مزاج پوچھا، فرمایا الحمدللہ اچھا ہوں، پھر کہنے لگے آج اتنے سویرے کیسے آ گئے؟ میں نے عرض کیا کل فرصت نہیں ملی کہ حاضر خدمت ہوتا، یوں بھی مجھے جلد آنا تھا، مولانا اسلم اور احباب دلی مشتاق کے زیارت ہیں، ان کا اصرار تھا کہ آپ سے اجازت حاصل کر لوں، انہیں آج ہی واپس جانا ہے۔ ارشاد ہوا اجازت کی کیا ضرورت ہے، مولانا اور ان کے احباب شوق سے تشریف لائیں۔ یوم اقبال کی باتیں ہونے لگی، فرمایا کل کی تقریب کیسی رہی، مضامین کل کیا انداز تھا۔ صفحہ نمبر 59، میں ابھی کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ علی بخش نے مولانا اور احباب دلی کے آنے کی اطلاع دی، حضرت علامہ نے فرمایا بہت بہتر، کرسیاں آگے بڑھا اور چیلم بدل لاؤ، جب تک علی بخش ٹھیک کرتا میں پیشوائی کے لیے برامدے کی طرف بڑھا اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ مولانا کمرے میں داخل ہوئے، سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر باکمال مودت آگے بڑھے، بڑھ کر حضرت علامہ سے مصافحہ کیا، حضرت علامہ بھی بڑے تپاک سے پیش آئے، حضرت مولانا کے سلام کا جواب اٹھ کر دیا اور انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتے تھے کہ مولانا خود ہی پلنگ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ احباب دلی میں دلی بھی آگے بڑھے، ان کے ہمراہ ایک صاحب اور بھی تھے، انہوں نے بھی سلام کرتے ہوئے حضرت علامہ سے مصافحہ کیا اور پلنگ کے ساتھ لگی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو میں نے چند کلمات بطور تعارف کہے، حضرت مولانا نے بڑی دل سوزی سے حضرت علامہ کی خیریت مزاج دریافت کی، اس پر علاج معالجے کا ذکر چل نکلا۔ حضرت علامہ مختصراً اپنی علالت دعا اور غذا کا حال بیان کرتے رہے، فرمایا علاج हकीम नबीना साहब का ही है, मगर मुझे जो भी फायदा हुआ है इन्हीं की दुआओं से हुआ है। लेकिन अब कई महीनों से सेहत एक खास मरहले से आगे नहीं बढ़ी, जिस्म कमजोर हो रहा है, गला बराबर बैठा हुआ है, आवाज में कशाइश नहीं होती। मौलाना ने कहा अल्लाह आपको शफा देगा, हमारी तो शब रोज यही दुआ है। नंबर एक, काजी मोहम्मद अशरफ मरकजी हुकूमत के मुलाजम, इनका इंतकाल भी हो चुका है। हजरत इलामा ने हुक्के के दो एक कश लिए और मैंने मौलाना की तरफ फेर दी। परवेज साहब ने सफरे हज का जिक्र छेड़ दिया, कहने लगे क्या हज का इरादा पुख्ता है? हजरत अलामा ने फरमाया इरादा तो है, बशर्तिया सेहत इजाजत दे, वरना अब के नहीं तो अगले साल सही। आगे जो अल्लाह को मंजूर, परवेज साहब ने कहा बेशक सेहत शर्त है, हमें तो बड़ी तश्वीश थी, आप इस हालत में सफर कर रहे हैं, ऐसा ना हो सेहत को गर्ज पहुंचे। सफा नंबर 60, दुनिया में हर किसी को कोई गर्ज होती है, हमारी गर्ज आप हैं। हजरत इलामा ने तबस्सुम फरमाया और फिर वही अल्फाज दोहराए जो अल्लाह को मंजूर, रशाद हुआ इस तरह एक तरह से तो मैं हज ही के रास्ते में हूँ, चाहता हूँ ये रास्ता जल्द तय हो जाए। फिर जरा दम लेकर मगर भराई हुई आवाज़ में फरमाया ये रास्ता तय तो हो जाता है, लेकिन मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता, मैं तो अब जो कुछ कहता हूँ वही के लिए कहता हूँ। और ये कहते कहते दफ्तर रुक गया, जैसे जैसे शिद्दत जज्बात इजहार मदा में हर्ज हो। बिलआखिर अरशाद फरमाया आस्ताना अकदस पर पहुंच जाऊं तो कुछ और भी अर्ज करूं। ये गोया अरशाद इशारा था अरमगान हिजाज की तरफ, जिसकी इब्तदा कब से हो चुकी थी लेकिन जिसका नाम अभी तजवीज़ नहीं हुआ था। हजरत अलामा तो इतना कहकर खामोश हो गए, मगर अहबाब दिल्ली तो मौके की तलाश में थे। हजरत अलामा ने बात ख़त्म की तो उन्होंने तबरक की फरमाइश कर दी, फरमाया मैं तो मजदूर हूँ, इन्हीं कुछ याद हो तो अरशारा मेरी तरफ था सुन लीजिए। इस पर अहबाब दिल्ली ने मुस्तफसर राना मेरी तरफ देखा, हजरत अलामा एक तरह से इजाजत दे ही चुके थे। मैंने हाफ़ज़े पर जोर दिया तो गुफ्तगू की रायत से एक रुबाई जहन में आ गई। मैंने मिसरा अव्वल पढ़ा, दूसरा मिसरा पढ़ रहा था कि हजरत अलामा पर रकत तारी होगी और वो बार बार इसका तकरार करने लगे, मैं खामोश हो गया। इस पर उन्होंने तीसरा मिसरा खुद ही अरशाद फरमाया, लेकिन अभी पूरे तौर पर अदा नहीं कर पाए थे कि आवाज़ गुलोगीर हो गई और वो यूं फूट फूट कर रोने लगे कि अहबाबे दिली परेशान हो गए। रबाई यह थी, तुम वा मानंद वा जानम दरगत वा पोस्त सोवे शहर के बदखा दर्रा ओस्त तो बाश ऐं जा वा बा खासाएं बिया मीज के मन दारम होवाए मंजले दोस्त। मैं खामोश था, अहबाब दिली खामोश। वो बड़ी तशवीश और परेशानी से हजरत अलामा के जज्ब व गुजार की कैफियत को देख रहे और अंदर ही अंदर मुजतरब थे कि इसका कोई ना गवार असर इनकी तबीयत पर ना पड़े।